परमात्मा का अमूल्य कोहिनूर हीरा, रूहानियत की खुशबू से भरपूर रूहे गुलाब, और अपनी इसी रूहानी खुशबू से संसार की रूहानी सेवा में अथक और सतत उपस्थित आदरणीय शिलू दीदी जी, एक बार जोरदार तालियों से हम दीदी जी का स्वागत करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के राजयोग शिविर की निर्देशिका है, आप शिक्षा प्रभाग राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की उपाध्यक्षा है, आप टीवी चैनलों में प्रवक्ता, महासम्मेलन वक्ता एवं अनुवादक है, आपने पांचों महाद्वीपों में एवं 75 से भी अधिक देशों में भ्रमण किया है। सन 2023 में आपको वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित भी किया है। आपका जन्म 1948 में मुंबई महानगरी में हुआ। आप 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ आप ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का भी अभ्यास करती रही। मुंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक होने के पश्चात 21 वर्ष की आयु में आप मानवता की ईश्वरीय सेवा में समर्पित हो गई। 1976 से आप मुख्यालय माउंट आबू में स्थायी रूप में रहकर राजयोग शिविरों का कुशल निर्देशन कर रही है। आज दीदी जी के क्लास का विषय हम सभी सुनेंगे, ब्राह्मण सो फरिश्ता। ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की राह, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने की राह, हर कदम पर है ईश्वर की चाह। शुद्ध विचारों से मन को सजाना, शुद्ध विचारों से मन को सजाना, हर कर्म को पवित्रता से निभाना, हर कर्म को पवित्रता से निभाना। अब हम सुनेंगे आदरणीय दीदी जी।
शांति, ओम शांति, माताई ओम शांति। आप सभी मधुबन बाबा के बेहद घर में पहुंचे हो। बाबा से मिलकर वरदान लेने के लिए आप सबका ये अधिकार है, जिसके लिए बाबा कहते हैं मधुबन, मुरली और टोली। ये हर एक का अधिकार है मधुबन में आना, बाबा की मुरली सुनना और टोली खाना। तो लोग हम लोगों से पूछते हैं, आपसे भी पूछते होंगे कि कि आप बार बार मधुबन माउंट आबू क्यों जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? भगवान से मिलने जाते हैं। तो यहां हम क्यों आते हैं? भगवान से मिलने, उनकी पालना प्राप्त करने, उनसे पढ़ाई पढ़ने, उनसे वरदान लेने, क्योंकि हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए। हम अभी यहाँ विजिटर के रूप में नहीं आए हैं, गेस्ट के रूप में नहीं आए हैं, लेकिन मधुबन हमारा बेहद का घर है, तो हम कहेंगे हम होस्ट है यहाँ के। हाँ, यहाँ ही हमारा एड्रेस कौन सा हम देते हैं? ब्रह्मा कुमारीज और फिर पांडव भवन माउंट आबू, ये हमारा हेडक्वार्टर्स है। तो हम सभी ब्राह्मण कुल भूषण, जब हमसे पूछते हैं लोग कि आपकी संस्था में उद्देश्य क्या है, तो हम क्या बताते हैं? मनुष्य से देवता बनना, ऐसे ही बताते ना, मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनना, ये हमारा उद्देश्य है। पर मनुष्य से देवता बनने के लिए किन किन कदमों पर चलना होगा, ये तो केवल हम बच्चे ही जानते हैं। मोटे रूप से तो कह देंगे मनुष्य से देवता, नर से नारायण। पर नर से नारायण कोई एक धक से तो नहीं बन जाएंगे। भले बाबा कई बार कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, लेकिन सेकंड में जीवन मुक्ति का मतलब क्या है? कि जैसे निश्चय बैठा कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, वो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं, ये निश्चय बैठते ही हम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, देवता बनने के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन उसके बीच में कितने पड़ाव आते हैं, वो भी बहुत जरूरी होते हैं पार करने के लिए। जैसे आप छत्तीसगढ़ से आए हो, या इंदौर से आए हो, या जहाँ कहीं से भी आए हो, कोई बहुत दूर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी आए होंगे। आजकल तो सीधी ट्रेन है, लेकिन पहले तो ये सब नहीं था, तो कितनी जगह चेंज करना पड़ता था। हाँ, सामान उतारो, फिर दूसरी ट्रेन में चढ़ाओ, फिर उतारो, फिर चढ़ाओ, बहुत मेहनत होती थी। लेकिन अभी तो कहेंगे भाई सीधे आ जाते हैं। तो मनुष्य से देवता ऐसे ही नहीं सीधे बन जाएंगे, तो कितने पड़ाव आते हैं। पर हाँ, सेकंड में जीवन मुक्ति, लक्ष्य मिला, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा पुरुषार्थ शुरू हो जाता है। पहले तो ये लक्ष्य ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था कि हम कोई मनुष्य से देवता बन सकते हैं, सोचा ही नहीं था कि नर भी कभी नारायण बन सकता है, कभी नहीं सोचा था। और ही हम अपने आप को क्या कहलाते थे? मैं नीच हूँ, पापी हूँ, दास हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ, जितने हीन शब्द है ना, वो हम अपने लिए यूज करते थे। और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर के उनकी तो कितनी स्तुति गाते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचा हम भी ये बन सकते हैं। सोचा था भाई, जिसने ज्ञान में आने से पहले ऐसे कभी सोचा था? हाथ उठाओ जिसने सोचा था। हाँ, कभी नहीं सोचा था पहले, नहीं। जैसे ये ज्ञान मिला, हमें लक्ष्य मिल गया, हमें ऐसा बनना है। तो कितने पड़ाव आते हैं उसके बीच में। अभी भी आपने क्लास सुना ना, योगी जीवन के लिए, राजयोग के लिए कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए जैसे परिचय मिला, और हमारा अभ्यास शुरू हो गया। पहला पहला अभ्यास क्या हमें मिला? आत्मा का परिचय मिलकर मिला हमें, तो हमें यही लक्ष्य मिला कि हमें आत्माभिमानी बनना है। आज भी बाबा ने मुरली में कितनी बार देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो का। तो देही अभिमानी बनना ये पहला कदम है, इसीलिए पहले पहले आत्मा का परिचय दिया जाता है। फिर दूसरा कदम है परमात्मा का परिचय देते हैं। तो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है, ये दूसरा कदम हो जाता है। लेकिन आत्मा समझकर परमात्मा को याद करने के लिए मन और बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान और योग का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि रूपी पात्र बहुत शुद्ध चाहिए। जैसे शेरनी का दूध रखने लिए सोने का बर्तन चाहिए, ऐसे मानते हैं, क्योंकि जैसी चीज वैसा उसका पात्र। तो भगवान का दिया हुआ ज्ञान उसके लिए जो हमें मिलता है देवता बनने के लिए, उस ऊंचे से ऊंचे ज्ञान को धारण करने के लिए इतना हमारा बुद्धि मन बुद्धि का पात्र स्वच्छ होना चाहिए। तो वो स्वच्छ बनाने लिए फिर बाबा ने हमें नियम दिए हैं, मर्यादाएं दी है। अन्न की शुद्धि रखो, संग की शुद्धि रखो, व्यवहार शुद्धि रखो, ये गुण धारण करने हैं, ये शक्तियां धारण करनी है, इस प्रकार से आपका जीवन होना चाहिए योगी जीवन, जिसका अंग अंग शीतल हो। तो बाबा ने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले ये दो कदम बताए, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, पर उसके लिए स्वच्छता बुद्धि की चाहिए, तो ये नियम मर्यादाएं पालन करो। क्योंकि अगर ये अन्न की शुद्धि, संग की शुद्धि, नियमित क्लास करना, नियमित अमृत वेला योग करना, जो भी बाबा ने हमें नियम मर्यादाएं दी है, वो हम नियम मर्यादाएं हमको इस कलयुगी बंधनों से मुक्त करते हैं। क्योंकि कलयुगी मनुष्य स्वतंत्रता के नाम पर अपने आप को बंधन में डालते जा रहे हैं। कैसे बंधन में डालते जा रहे हैं? स्वतंत्रता के नाम पर। आजकल तो ये बहुत चल गया, मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं सो करूं, मैं जो चाहूं सो कहूं, मुझे कौन रोक सकता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो चाहे सो कहे, किसके लिए भी कहे, प्रधानमंत्री के लिए भी कहे, किसके लिए भी कहे, आजकल राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते, मतलब जिनको जिनका मुख खुला हुआ है वो तो किसके लिए भी निंदा ग्लानी करते रहेंगे। लेकिन बाबा ने हमें कहा है ये स्वतंत्रता नहीं है, ये स्वच्छंदता है। आज बाबा ने कितनी सुंदर बातें मुरली में कही, हमारे बोल कैसे हो, हमारी सोच कैसे हो, हमारे कर्म कैसे हो, ये सब बाबा हमको ये नियम मर्यादाएं जो सिखाते हैं मन बुद्धि को स्वच्छ बनाने के लिए, तब आत्मिक स्थिति और परमात्मा की याद रह सकेगी इस मन बुद्धि के पात्र में। इसीलिए बाबा ने हमें कहा कि इसी बंधन में ही स्वतंत्रता है। कईयों को ये बंधन लगता है, ज्ञान में आने से पहले कुछ भी खा लेते थे, कहाँ भी खा लेते थे, कुछ भी पहन लेते थे, कुछ भी कर लेते थे, कौन रोकने वाला है। लेकिन जैसे बाबा के बच्चे बने तो कहा नहीं, ये नहीं खाना है, शुद्ध भोजन खाना है, अमृत वेला उठना है। हाँ, पहले तो 10-10 बजे तक सो गए, कौन पूछने वाला है, छुट्टी का दिन है, कहीं जाना नहीं है, सो जाओ। कुछ भी खा लो, कहीं भी खा लो, लेकिन अभी नहीं। परंतु इस स्वतंत्र, इस बंधन में अंतिम स्वतंत्रता है। देखो आजकल कुछ भी खा लेते हैं तो देखो फिर पेट खराब हो जाता है। आजकल तो पता नहीं किसमें क्या मिलावट भी डाल देंगे, कुछ पता नहीं चलता है। दुनिया में देखो क्या क्या चल रहा है, कितना कितनी मिलावट खोरी है, और किसी पर कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी कर लेगा। आज वो अपना हमें मित्र समझता है, कल दुश्मन बन जाएगा, पता भी नहीं। सामने से महिमा कर रहा है और पीठ के पीछे से ग्लानी करेगा, तो पता तो कुछ भी चलता नहीं है। तो इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं संग दोष से बचो, बहुत जरूरी है। और आजकल की जो सिनेमा है, दादी जी हमेशा कहती थी सिनेमा माना पाप की माँ, सिन माँ, सिन माना पाप। काम और क्रोध के सिवाय तो आजकल फिल्मों में कुछ होता ही नहीं है। जो कलयुगी दुनिया में चलता है वही फिल्मों में दिखाते, प्रैक्टिकल तो दुनिया में चल ही रही है वो बातें। लेकिन बाबा ने हमें उसके लिए बंदिश डाल दी है, जितना नियम मर्यादाओं में रहेंगे उतनी आत्मा हमारी स्ट्रांग बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी, तो हमारा योग भी लग सकेगा। क्योंकि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, संग का रंग लगता है, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये पहले कदम में जब इन बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो माया तो पछाड़ने में, पीछे करने में एक पल की भी देरी नहीं करती है। क्योंकि बाबा का बनने से माया से युद्ध शुरू हो जाती है। पहले तो पता ही नहीं था कि माया से कोई युद्ध भी करनी होती है, समझते थे यही तो जीवन है। और कई तो इतने तक समझते थे माया के वश होकर कि खाओ पियो मौज करो यही जीवन है, खाओ पियो मौज करो बस, ई ड्रिंक एंड बी मेरी बस, नाचो गाओ ये जो कुछ चाहिए करो, कोई बंधन नहीं। लेकिन वो जो स्वतंत्रता के आधार से बंधन हो गए, कितने बंधन हो गए। हाँ भाई मैं मालिक हूँ, मैं कमाता हूँ, सिगरेट पियो क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछने वाला है, कौन मुझे रोकेगा सिगरेट नहीं पियो, कौन कहेगा थोड़ा शराब पी लो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, इन सब बुरी आदतों में फंसेंगे। हाँ या आजकल जुआ खेलते हैं, ये न जाने क्या क्या आजकल कलयुगी दुनिया में है, अगर उनके पीछे जाएंगे तो आखिर क्या होगा। आखिर वो चीज हमें इतना ग्रसित कर लेगी जो उसके बिना रह नहीं सकेंगे, रह नहीं सकेंगे। तो स्वतंत्रता के नाम पर धीरे धीरे क्या हो जाता है, बंधनों में बंध जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं ना, पहले कोई सिगरेट पीता है 3 इंच का सिगरेट होता है, कोई बड़ा ज्यादा नहीं बड़ा होता है, लेकिन 3 इंच का सिगरेट अगर पीता जाए इतना चेन स्मोकर बन जाएगा जो आखिर सिगरेट के बिना रह ही नहीं सकता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और परिणाम स्वरूप वो सिगरेट क्या पीता है, धीरे धीरे सिगरेट उसको पीने लगती है ना, सिगरेट पीने लगती है ना उनको। पहले वो थोड़ी थोड़ी शराब पिएगा, सोचेगा चलो ज्यादा तो नहीं पीता हूँ, कई समस्या जरा सा ही पीता हूँ, लेकिन वो जरा सा भी आके धीरे धीरे और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, क्योंकि फिर आदत से मजबूर हो जाएगा। और धीरे धीरे वो शराब क्या वो पीता है, शराब उसको पी लेती है, ऐसे ही होता है ना, होता है हरेक का, हरेक जानते हैं। इसीलिए इस स्वतंत्रता से धीरे धीरे बंधन बन जाता है। लेकिन बाबा ने जो हमें मर्यादाएं नियम दिए हैं, ये नियम भले बंधन लगते होंगे कईयों को, हाँ कईयों को बंधन लगते हैं जैसे बाबा के ज्ञान में आते हैं, तो पहले तो बहुत अच्छा चलते, फिर जब नियमों का पता चलता है तो कहते भाई मेरे से तो ये नियम पालन नहीं हो सकते, सीधा ही हाथ जोड़ देते हैं हाथ ही जोड़ देते हैं, भाई ठीक है तुम्हारी मर्जी। लेकिन बाद में वो महसूस करते हैं कि देखो यहाँ जो नियम मर्यादाएं बताई जाती है इसमें कितना फायदा है, आखिर यही फायदा महसूस करेंगे, बात नहीं पूछो। और वो सच्ची स्वतंत्रता हमें दिलाते, कहीं भी आंख नहीं डूबती है, किसी भी होटल में जाकर खाने की, रेस्टोरेंट में खाने की कभी इच्छा नहीं होती है। हाँ भाई, होती है क्या किसी की इच्छा? जिसकी इच्छा होती है कभी कभी हाथ उठाओ, देखो कोई नहीं। हाँ, एक दो हाथ उठा रहे हैं, शायद इच्छा होती है। लेकिन जो सचमुच हम नियम मर्यादाओं के अंतर्गत चलते हैं, उनकी तो इच्छा भी नहीं होगी। और उसके लिए तो बाबा और ही कहते हैं, बच्चे देखते हुए भी नहीं देखो, ये सब साइट सीन्स है, क्या नहीं आकर्षण कराते हैं, बहुत कुछ। तो इसीलिए ये जैसे ही हमारे नियम पक्के होते जाते हैं, हम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाते। फिर दूसरी मर्यादाएं हैं, पवित्रता की धारणा, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कोई भी विकार के वश है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, कोई भी विकार के वश है, क्योंकि वो इंद्रियों का अल्पकाल का सुख है। क्योंकि कोई भी विकार ये इंद्रियों का अल्पकाल का सुख है, और ये अल्पकाल का सुख दीर्घकाल में ये दुख ही देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं, हाँ, फिर जो उसमें फंसते जाते आखिर दुखी होकर मरते हैं। तो इसीलिए बाबा ने हमसे पहले ये छुड़ा दिया, बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, ये घोर कलयुग की बातें हैं, ये अंत का समय है, अभी सब क्षणभंगुर है, सब कुछ विनाश होना है, ये सब कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो पहले से ही फिर बाबा उपराम भी कराते हैं। कल भी बाबा ने मोह पर कितना सुनाया, माताओं के लिए बाबा ने कहा मोह की बंदरी बन जाती है माताएं। तो जब हमने कल क्लास में मुरली सुनाई ना, मोह की बंदरी बन जाती, तो भाई लोग खूब हंसने लगे। क्योंकि माताएं मोह की बंदरी बन जाती है। लेकिन फिर भाई जो होते वो क्रोध के राजा बन जाते हैं, क्रोध उनके मुख से निकलता है। बहने बिचारी चलो अपना अपने आप को अश्रुधारा बहा करके शांत कर देगी, फिर भी चलो जो कुछ भी हुआ। लेकिन बाबा ने हमें कहा रोना भी नहीं है, जिन रोना जिन डोया तिन खोया, तो रोना भी नहीं है। तो ये सब मर्यादाओं के अंतर्गत आता है।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है, अपने सुकर्मों के बल पर ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो,
शिव बाबा के ज्ञान से फिर
मनुष्य से देवता बनने के लिए पहली सीढ़ी है आत्माभिमानी बनना, फिर दूसरी सीढ़ी है परमात्माभिमानी बनना। हम कौन हैं, किसके बच्चे हैं? वो नशा जब आत्मा को चढ़ता है तो बाकी सब नशे फीके लगते हैं, है ना? सब नशे, और दुनिया में कितने प्रकार के नशे हैं, सब फीके लगते हैं। धन का नशा, बुद्धि का नशा, अपनी विशेषताओं का नशा, न जाने क्या क्या नशे हैं दुनिया के अंदर। लेकिन जब जिसको भगवान मिला, उस नशे से के आगे तो बाकी सब नशे कुछ भी नहीं है, है ना? ऐसे तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो कभी भी वो नशे की जरूरत ही नहीं है। इसलिए कहते हैं नारायणी नशा, सब नशों में है नुकसान सिवाय एक नशे के, वो नशा है नारायणी नशा। मैं क्या बन रहा हूँ, कौन मुझे बना रहा है, कौन मेरा साथी है, कौन मेरा टीचर है, हाँ कौन मेरा सतगुरु है। तो ये निश्चय और नशे के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आत्मा को के अंदर शक्ति भरते हैं। तो जैसे ये शक्ति आत्मा में आती जाती है तो फिर आगे कदम क्या होता है, हम विदेह स्थिति को प्राप्त करते हैं, जिसका मिसाल बाबा देते हैं राजा जनक। राजा जनक को कहते थे विदेह राजा। विदेह राजा का मतलब आत्मा देह में थी, आत्मा महलों में रहती थी, लेकिन उन महलों में कोई मोह नहीं था। विदेह राजा जनक की कहानियां बहुत आती है शास्त्रों में, कैसे एक वो सन्यासी भी ईर्ष्या करते थे राजा जनक से। कहां वो राजा था और सन्यासी ने तो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन विदेह राजा का, राजा जनक का जो मान था वो सन्यासियों से भी ज्यादा था। किस आधार पर? क्योंकि वो महलों में रहते हुए भी उन महलों के मोह में नहीं था। तो मिसाल देते, एक कहानी बताते न कि एक सन्यासी उनके पास गया और कहा कि आप तो इतने सुंदर महल में रहते हो, आपका क्या नहीं राजा ही है, लेकिन आप विदेह राजा कैसे कहलाते हो? तो जनक राजा ने उस सन्यासी को एक दीपक दिया और कहा कि जाओ ये दीपक के आधार से मेरा महल का अवलोकन करके आओ। तो गया उस दीपक को लेकर महल का अवलोकन करने, पर उसको साथ साथ ये भी कहा कि आप मेरे महल को देखो, आराम से देखो, अच्छी तरह देखो, उसकी मीनाकारी देखो, सबको देखो, बहुत सुंदर था, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए। अब एक उसको सावधानी दे दी, दिया बुझना नहीं चाहिए। अब दिया बुझना नहीं चाहिए तो वो महल देख रहा, परंतु ध्यान तो दिए पर था, तो दिए पर जो ध्यान था तो बार बार दिया बुझ रहा था, हवा आ रही थी तो उसको रोकता रहा, दिया बुझना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो आखिर सारा महल देख करके वापस आया तो कहा कि राजा ने कहा मेरा महल देखा? तो कहा देखा जरूर, लेकिन ध्यान तो दिए पर था। तो कहा बस यही विदेह की स्थिति है। विदेह की स्थिति माना सब कुछ करते हुए ध्यान अपनी आत्मा पर, ये आत्मा का दिया बुझे नहीं, क्योंकि दिया कब बुझता है? जब भी दिया जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, तो वो बुझता कब है? दो कारणों से बुझता है। एक कारण होता है कि उसका ग्रिट खत्म हो गया, इसीलिए बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ग्रिट खत्म नहीं होना चाहिए, ग्रिट उसमें होना ही चाहिए। और दूसरा ध्यान ये देना होता है कि हवा न लगे, क्योंकि हवा लगने से भी दिया बुझ जाता है। तो हवा भी न लगे और ग्रिट भी खत्म न हो, इसलिए दो बातों पर ध्यान देते हैं ताकि दिया जलता रहे। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान का ग्रिट नित्य पढ़ते रहना चाहिए, इसीलिए बाबा नियम बताते हैं हम कि रोज पढ़ाई करो, रोज बाबा की मुरली पढ़ो, रोज सुनो, रोज पढ़ो भी सुनो भी, और क्लास में भी आओ। तो ये रोज आप करेंगे तो तब ये ग्रित रोज चाहिए। जैसे रोज आप स्नान करते हो ना, ये चलता है क्या? दो दिन स्नान नहीं किया तो चलता है? हाँ चलता है क्या? नहीं, अरे मैंने आज स्नान नहीं किया, मुझे पहले स्नान करना है, उसके बिना बेचैन हो जाते हो। तो जैसे स्नान किए बिना बेचैन हो जाते हैं, तो ये भी तो ज्ञान स्नान है। और इस ज्ञान स्नान के बिना कैसे हम रह सकते हैं? आत्मा की ज्योति बुझ जाएगी, इसीलिए रोज बाबा की मुरली हमें जरूर सुननी पड़नी है, ताकि ग्रत पड़ता रहे। और फिर हवा के जो झोंके, माना ये माया के झोंके हैं, ये माया के झोंके आते हैं। बाबा माया के बारे में बाबा इतना मुरलियों में सुनाते हैं, माया कभी नाक से पकड़ती है, कभी कान से पकड़ती है, कभी चोटी से पकड़ती है, हाँ कभी बॉक्सिंग करती है, ऐसे वो क्या बोलते छोशा मारती है, हाँ कभी गिरा देती है, फिर बेहोश कर देती है, फिर मार भी डालती है, हाँ ऐसे हो जाता है, मार भी डालती है, बहुत ऐसे इसको लगता रहेगा तो आखिर गिर करके मर भी जाते हैं। तो माया नाक से कैसे पकड़ती है? जब कोई नाक से पकड़ता है ना, अपना भी नाक हम पकड़ते हैं, तो श्वास लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नाक से ही श्वास लेते हैं। तो इसी प्रकार श्वास नहीं ले पाना, माना कहीं ना कहीं मूंझ है अंदर, चाहे निश्चय की कमी है, चाहे किसी और बात का कुछ व्यर्थ संकल्प है, कुछ न कुछ है जो अंदर मूंझ पैदा करता है। इसका मतलब माया ने नाक से पकड़ लिया है। फिर माया कान से पकड़ती है, कान से कैसे पकड़ती है? जब पर चिंतन सुनते हैं, अरे फलाने ने ये किया, फलाने ने वो किया, फलाना फलाना, तो पर चिंतन, इसकी बात उसकी बात उसकी बात, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, इसको ऐसे नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए। अरे तुम अपना ध्यान रखो ना, आपको देवता बनना है, वो तो बन जाएगा या नहीं बनेगा वो उसकी तकदीर, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, और मुझे क्या करना चाहिए वो तो सोचते ही नहीं, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, अब उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं भले करूं, मैं कुछ भी करूं, उसको नहीं करना चाहिए। तो ये दूसरों को देखना, पर चिंतन करना, पर निंदा करना, पर ग्लानी करना, फिर पर मत पर चलना, हाँ फिर उल्टी मत किसी की मिली तो उस पर चलना, ये है जैसे कान भरना। और कान भर गए तो माना ये कान से माया ने पकड़ लिया है, ये समझ लो। फिर चोटी पकड़ती है माया, कैसे चोटी पकड़ती है? हाँ चोटी कैसे पकड़ती है, हम पीछे मुड़ के देखते हैं। कई कहते हैं मैं ज्ञान में नहीं था ना, तो मैं तो बहुत सुखी था। अरे कैसे सुखी थे? अरे जो चाहो सो करो, अभी ज्ञान में आ गया, ये नहीं करना, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बंधन आ गया। पर ये भूल जाते हैं इसी बंधन में सच्ची स्वतंत्रता है। इसीलिए जो पिछला बातें हैं ना, उसी पर ही ध्यान देते हैं, हाँ इसी पर ही ध्यान देते हैं। हाँ मैं बाबा का बन तो गया, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, छोड़ो, इसीलिए ज्ञान ही छोड़ दो, कहिए ना, ज्ञान अच्छा लगता है लेकिन क्यों नहीं आ पाते हैं भाई, मेरे से ये नियम पालन नहीं हो पाते, इसीलिए नहीं करना है, इसीलिए पीछे मुड़ के देखते हैं। बाबा कहते पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, वो तो मर गए हम उस जीवन से, ये तो नया जन्म है हमारा, ब्राह्मण बने हैं ना, शूद्र थोड़ी है, ये तो थोड़ी उस शूद्र भी है और ब्राह्मण भी है, या तो शूद्र या तो ब्राह्मण है, ऐसे नहीं दोनों नाव में पांव रखेंगे तो बीच से चीर जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पीछे मुड़ के देखना भी नहीं है, वो पूर्व जन्म था। बाकी करना तो सब कुछ है, जो हमारी जिम्मेदारियां वो तो पूरी निभानी है, लेकिन जो आत्मा की जो डिसिप्लिन है, नियम मर्यादाएं हैं, उसमें इतने हम पक्के रहें, जो पूर्व की बातों को तो सोचना भी नहीं है। पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, अभी बहन जी मुझे गुस्सा इतना नहीं आता है। अरे इतना नहीं आता है तो थोड़ा तो आता है ना, इतना नहीं आता है, चलो परसेंटेज कम हुआ, लेकिन हमको दूसरों से भेंट नहीं करनी है। फलाने को तो कितना गुस्सा आता है, मेरे को तो फिर भी इतना नहीं आता है, अभी जैसे कि मैं और अच्छा हूँ, उसको तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मेरे को इतना नहीं आता है, अब वो कुछ भी करे उसका भाग्य, लेकिन किसी से अपनी भेंट कभी नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। अगर भेंट करनी भी है तो अपने से भेंट करो। कल ये ऐसी परिस्थिति आई थी तो मुझे बहुत गुस्सा आया था, आज भी ऐसी लगभग परिस्थिति आई, जबकि वो वैसी कभी नहीं आती है दोबारा, इस कल्प में तो फिर ऐसे नहीं आएगी, बदल कर आएगी, लेकिन आज जब ऐसी लगभग परिस्थिति जो आई तो मुझे गुस्सा नहीं आया, माना कल से आज मैं सुधर गया, ज्यादा सुधर गया, क्योंकि गुस्सा नहीं आया। कल मैंने ये चीज खाई तो भूख में पानी आ गया और मैंने पूछे बिना ऐसे खा लिया, चोरी हो गई। अब जिसकी जिसका है उससे पूछे बिना ऐसे ही खा लिया या रख लिया, ये तो चोरी हो गई है ना, चोरी हो गई ना, लोभ हो गया भाई। पूछ के कुछ भी चाहिए पूछ के लो, मना थोड़ी है, लेकिन पूछ के लो, क्योंकि उसको पता है कि किसने किसके लिए रखा है, जो भी है तो पूछ के लेंगे तो निश्चिंत होकर के ले सकेंगे, भाई मैंने पूछ के लिया है। तो बाबा कहते हैं कि हमारा जो नियम मर्यादाओं में इतने हम पक्के रहते हैं ताकि ये आंखें कहीं भी डूबती नहीं है। तो विदेह राजा की स्थिति क्या है, आत्मा पर ध्यान देना, आत्मा का कल्याण किसमें है उस पर ध्यान देना, ये दीपक बुझे नहीं, नियमित हमारी धारणा बनती रहे और कल से आज मैं और अच्छा हो जाऊं। इसलिए बाबा चार्ट के लिए कहते हैं कल से आज का चार्ट अच्छा हो, आज से कल आने वाले जो कल है उसका उस दिन का चार्ट और अच्छा होना चाहिए। चलो जो भूल हुई वो सुधार ली, आगे फिर वो भूल नहीं करनी है, भूले तो होती रहती है ना दुनिया में, फिर इसको बड़ा वो क्या कहते हैं कि भूले करना ये तो मनुष्य का धर्म है, तो मनुष्य का धर्म है भूले करना और भगवान का धर्म है माफ करना, ऐसे नहीं ताली नहीं बजाना है, मनुष्य का धर्म है भूले करना, क्योंकि मनुष्य तो भूली करेगा, कमजोर है, तो मनुष्य का काम है भूले करना और भगवान का काम है क्षमा करना, भगवान मैंने ये भूल कर दी क्षमा कर दो। अब भगवान ने क्षमा की या नहीं की ये कैसे पता चलेगा, पता चलेगा कि हाँ क्षमा कर लिया, आपने बोल दिया तो हो गई क्षमा, क्या मेरे कर्म का फल तो मुझे मिलेगा ही ना, बस भगवान की आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा ये सब दुख दूर हो जाएगा। अब आशीर्वाद तो खुद पर करनी है, बाबा कहते जो श्रीमद बाबा देते उस पर चलो, यही आशीर्वाद है। अगर कहते भी है बाबा मुझ पर रहम करो, बाबा मुझको माफ करो, मुझे माफ करो, तो फिर माफ करो है सिर्फ ने ये नहीं कहना, हाँ बाबा ये भूल मेरे से हो गई, बाबा मैं आपको वायदा देता हूँ कि ये भूल मैं दोबारा नहीं करूँगा, ये जरूर कहो तो बाबा माफ भी करे। अब कहेंगे नहीं बाबा हमारा तो ये नियम है, मनुष्य हूं तो भूले करूंगा और आप माफ करते रहो। हाँ, जैसे वो आरती में भी गाते ना, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। अब ये तो कह दिया भगवान को, मेरे विषय विकार मिटाओ, मेरे पाप हरो। फिर कहेंगे काम विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी, क्रोध के बिना बच्चों को कैसे संभालेंगे, लोभ नहीं होगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी, मोह नहीं होगा तो पालेंगे कैसे। अरे आपने ही तो कहा विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो हमारा काम है विषय विकारों में जाना और भगवान का काम है पाप हरना। ऐसे हम करें वो हरे, हाँ, तो भगवान को यही काम दिया हरने का और हमको काम दिया करने का। हाँ, जैसे बच्चा होता है ना, अभी बहुत गंदगी करता है, ये खिलौना यहाँ वहाँ सब जगह पटकता रहता है, सारा कमरा गंदा कर देता है। फिर मम्मी को कहेगा मम्मी ये साफ करो, मम्मी कहेगी मैं तेरी नौकर हूँ क्या, तुम साफ करो, तुमने क्यों गंदा किया। आज जहाँ वो चीज जहाँ है तुम वहीं वापस रखो ना, तुम यहाँ वहाँ ऐसे ही छोड़ दोगे और फिर मुझे कहोगे कि साफ करो। आप कब सीखोगे, हाँ तुम कब सीखोगे। अभी माँ ही करती रही तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, तो बड़ा हो जाएगा तो भी नहीं सीखेगा। इसलिए बचपन में ही बच्चों को सिखाया जाता है कि कैसे अपनी चीजें संभाल कर रखनी होती है, यहाँ वहाँ फेंकना नहीं होता है। तो बचपन से ही वो संस्कार अगर माँ बाप डालते हैं, ऑटोमेटिकली बड़े होकर की वो संस्कार चलते हैं जो बचपन में सीखे। ऐसे नहीं मम्मी सॉरी और सॉरी सॉरी करता रहे और फिर वही भूल करता रहे। मम्मी कहेगी सारा दिन सॉरी सॉरी करते हो, सुधरोगे या नहीं सुधरोगे। हाँ मम्मी तो जरूर आंख दिखाएगी ना, तो भगवान भी तो आंख दिखाएगा, भगवान क्षमा कर दो क्षमा कर दो। इसीलिए बाबा कहते खुद को अगर क्षमा करो कैसे, दोबारा वो भूल ना करो। बस खुद को आशीर्वाद दो बाबा की जो श्रीमत है उस पर चलकर। तो विदेश स्थिति माना इन जो बताया आपको कि इन इंद्रियों को हम शीतल बनाते जाते हैं, देह में तो रह रहे हैं, ये आंखें शीतल बन जाती है, ये कान शीतल बन जाते हैं, माया ने उनको तपाया है और भगवान आकर इंद्रियों को शीतल कर देते हैं, काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, तो अंग अंग शीतल बन जाते हैं। तो माया पीछे कैसे सोचते हैं, चलो फिर माया, फिर और आगे माया क्या करती है, एक बॉक्सिंग करती है, जैसे मारती है और वो एकदम गिर पड़ता है। अभी थोड़ी भी चोट लगी ना माया की, फिर बहुत जल्दी नहीं खड़े हो पाते। चलो पहले तो पांचवी एक मंजिल से गिरे, चलो बच भी गए, फिर दूसरी मंजिल से चलो थोड़ी हड्डी टूटी, तीसरी से गिरी और हड्डी टूटी, पर बाबा कहते पांचवे मंजिल से गिरे तो चकनाचूर, ओम शांति हो जाती है। इसीलिए बाबा हमें बार बार हर मुरली में कहते बच्चे पवित्र बनो पवित्र बनो। इस पवित्रता पर ही कितने झगड़े चलते हैं, इस संस्था में कितने झगड़े आए। और बाबा ने उस दिन भी कहा सबसे अच्छी युक्ति है बहन भाई की, बहन भाई। लेकिन आजकल कलयुगी दुनिया में बहन भाई की दृष्टि पर भी कोई ये नहीं है कि भाई हाँ बहन भाई की बहन भाई है तो इनकी दृष्टि आपस में अच्छी होगी, जरूरी नहीं है। कलयुग में तो कुछ भी हो सकता है, बहन भाई भी कहलाएंगे तो भी कुदृष्टि जाती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को बहुत सावधान करते हैं, हर एक से सावधान करते हैं, हर एक बात में सावधानी से चलो, फिर इंद्रियों को इतना शीतल कर दो कि कोई विकार आपको छू न सके। ये पांच विकार क्या है, इंद्रिय काम विकार किस इंद्रिय को आकर्षित करता है, चमड़ी को, है ना। काम विकार क्या है, चमड़ी का आकर्षण है और क्या है, काम विकार चमड़ी का ही आकर्षण है, उसी में उनको खुशी होती है। ये क्रोध आंखों का आकर्षण है, हाँ गुस्सा तुरंत पता चल जाता है, जब गुस्सा आता है आंखों से पता चल जाता है, कहते हैं ना चेहरा मन का दर्पण है, लेकिन उस चेहरे में भी आंखें सबसे बड़ा दर्पण है मन में गुस्सा है तो आंखें। फिर तीसरा है लोभ, क्रोध के बाद लोभ, ये जीव, ये जीव के लिए जीव, ये मुख दो काम करता है, एक तो जीव से खाते हैं और दूसरा इस मुख से बोलते हैं, तो बोलने का भी काम करता है तो खाने का भी काम करता है, ये दोनों लोभ के अंतर्गत आते हैं। मुख से कुछ भी बोल देते हैं, अब उस व्यक्ति पर क्या बीतेगी, वो कुछ भी बोल दिया कितना उसको दुख होगा, कितनी उसको ठेस पहुंचेगी, जरा भी परवाह नहीं। कहा मैं सच तो बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, और कई समझते हैं सच जो बोलना होता है ये सच तो कड़वा होता है, ट्रूथ इज बिटर ऐसे कहते हैं, कड़वा होता है। अब अभी लेकिन देखो, माँ को अगर कड़वी दवाई भी बच्चे को देनी होती है तो ऐसे ही नहीं पिलाती, वो पिएगा ही नहीं, तो उसको क्या करना होता है, हाँ थोड़ा ये मधु या वो डाल करके देना होता है या किसी सूप में डालना, मतलब सीधा ही नहीं वो पिएगा। तो सच भी बताओ हर्जा नहीं, लेकिन वो भी तो मिठास से बता सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी कि कड़वा ही बोलना है, गुस्से से ही बोलना है, मैं तो सच बोलता हूँ। सच भी बोलो, जरूर बोलो, आज भी अभी ये जो चल रहा है अव्यक्त इशारे, उसमें क्या आ रहा है, वही ना, सत्यता के साथ साथ सभ्यता, सभ्यता भी बहुत जरूरी है, रॉयल्टी भी बहुत जरूरी है, हमारे बोल कैसे हो, हमारा देखना कैसे हो, जो इतनी बाबा रॉयल्टी बताते हैं, देवताएं कैसे होंगे, उसके पहले तो फरिश्ता बनना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस माया से बहुत बचकर चलना है, नहीं तो माया खींच के ले जाएगी कलयुगी दुनिया में, और है सारी अपनी भूल, और फिर दोष क्या निकालेंगे, फलाने के कारण मैंने छोड़ा, फलाने के कारण छोड़ा, ये संस्था ही ऐसी है, यहां तक भी पहुंच जाएंगे। अरे संस्था को नाम क्यों बदनाम करते हो, आप अपने आप को नहीं सुधार सके तो पूरी संस्था ही खराब है। कोई स्कूल में फेल हो गया तो कहेंगे ये डॉक्टर तो टीचर ही खराब है, अरे भाई तुम ठीक नहीं पढ़े ना, दूसरे तो पास विद ऑनर हो गए, तुम फेल हो गए तो टीचर थोड़ी खराब है, स्कूल थोड़ी खराब है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो, तो विदेह स्थिति बनेगी, जब ये इंद्रियां इतनी शीतल होगी तो क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, मोह कौन सी इंद्री, ये नाक, जिससे मोह होता है ना, उसको बस ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे जैसे नाक रगड़ते हैं उनके शरीर पर, नाक रगड़ते हैं, उनके श्वास लेते हैं, समझते ये प्यार है ना, मोह है, ये प्यार नहीं, ये प्यार नहीं है, ये मोह है, ये विकार है। और अहंकार तो काम हो गया चमड़ी, क्रोध हो गया आंखें, लोभ हो गया जीभ, और मोह हो गया कान, ये नाक, और अहंकार ये कान। किसी ने मेरे लिए कुछ बुरा कहा और मैंने और मुझे बताया गया कि फलाना आपके लिए ऐसे बुरा बोल रहा है, अच्छा उसने मेरे लिए ऐसे कहा, मैं दिखाता हूँ, माना अहंकार दिखा दिया ना उसने, अहंकार में ला करके मैं दिखाता हूँ, मैं भी कम हो क्या, और मैं भी कम हो क्या, तो फिर दो बांस की सूखी लकड़ी हवा जैसे आई टकराई तो आग निकल आई। जंगल के जंगल क्यों जल जाते हैं, सूखी लकड़ी होती है, बांस की लकड़ियां इतनी सूखी हो जाती है, वो आपस में जैसे टकराती है आग निकलती है। तो अहंकार अहंकार से टकराएगा ना, और परिणाम स्वरूप फिर माया उनको अपने अपने पास खींच के ले जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत संभालना है, बहुत संभालना, और एक एक इंद्री पर ध्यान देना है कि ये कहीं माया के वश न हो जाए, कहीं भी किसी विकार के वशीभूत न हो जाए। और फिर इसीलिए बाबा कहते विदेह स्थिति, और जब ये विदेह स्थिति है तो देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते, हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है, जैसे ड्रामा कोई एक्टर्स होते हैं ना, अब उनका ड्रामा में कोई पार्ट है, अभी नेक्स्ट जो उसका पार्ट होना है उसको वो याद करना है, याद करता है ग्रीन रूम में, वो एक्टर्स अपना अपना जो उसको बोलना है वो याद करते हैं। अब वो हर एक अपना अपना करता है, अब दूसरे एक्टर को जो अपना पार्ट बजाना है इसमें दूसरा एक्टर तो इंटरफेयर नहीं करेगा, वो अपना बजा रहा है, अपना याद कर रहा है पार्ट। हम अपना पार्ट याद करें, हम अपना पार्ट को भूल करके दूसरे के पार्ट के लिए कहिए तुम ठीक नहीं बोल रहे हो, और खुद का तो ठीक है ही नहीं। हम अपना ध्यान रखें ना कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये सब बातें जब बाबा से हम सुनते हैं तो महसूस होता है कि मुझे बदलना है, तो मुझे वो विदेश स्थिति लानी है, और उस विदेश स्थिति के आधार पर हम धीरे धीरे अशरीरी बन सकते हैं। शरीर में है लेकिन शरीर में नहीं है, एकदम न्यारे हो गए शरीर से, एकदम हल्के डबल लाइट आत्मा हो गई। क्योंकि लाइट दो अर्थों में लिया जाता है, एक लाइट माना हल्का और दूसरा लाइट माना प्रकाश, तो आत्मा प्रकाश स्वरूप भी है तो हल्की भी है, नहीं तो व्यर्थ संकल्पों का बोझ आत्मा को इतना भारी कर देता है जो वो आत्मा अशरीरी बन ही नहीं सकती है, वो बोझ है ना। जैसे डॉक्टर्स भी कहेंगे ना भाई अपना वजन कम करो, वजन कम करो, क्योंकि अगर वजन बहुत ज्यादा होगा आपके घुटनों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, ये घुटने सहन नहीं कर सकेंगे इतना वजन, इसीलिए वजन कम करो। तो ये व्यर्थ संकल्पों का भी वजन कम करना है, छोड़ो छोड़ो तो छूटो। बाबा बैठा है, हाँ बाबा देखने वाला है, हम कौन होते हैं, हम कोई धर्मराज थोड़ी है किसी के जो हम इनका बदला लेंगे, हमको नहीं लेना है। कोई भी बात होती ना दुनिया में भी हम देखते हैं, भाई पुलिस में रिपोर्ट करो, आप नहीं सामना करो, कानून को हाथ में नहीं लो, अपने हाथ में कानून को लिया तो दोषी आप बन जाएंगे, आप पुलिस में रिपोर्ट करो, आप केस करो, आपस में नहीं भिड़ो। तो इसीलिए बाबा कहते किसी को नहीं देखो, बस बाबा को देखो, क्योंकि लक्ष्य हमारा पीछे का नहीं है। मैं पहले कैसा था, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे संपूर्ण बनना है, कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने हमें दिया है, संपन्न बनना है। किसमें संपूर्ण बनना है, किसमें संपन्न बनना है, सर्वगुण संपन्न, संपन्न माना भरपूर, जितने भी गुण है उन सब गुणों में मुझे संपन्न बनना है, किसी भी गुण की कमी न हो। 36 गुण बाबा बताते हैं, देवताई गुण, डिवाइन वर्च्यूज कहते हैं, देवताओं देवता बनना है ना, तो इतने गुण हमारे में है, फिर आत्मा के जो मूल गुण है वो मेरे अंदर कितने हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद शक्ति, ये जो 7 मूल गुण हैं ये मेरे अंदर कितने हैं। तो आत्मा के जो मूल गुण हैं, कोर वैल्यूज जिसको कहते हैं, मूल आत्मा के 7 गुण और फिर सारे दिव्य गुण, वो तो अनगिनत है, 36 तो कम से कम है, 36 गुणों की माला। तो ये जब हमारे अंदर आए तब हम कहेंगे हम संपन्न भी है और संपूर्ण भी है। तो सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, तो 16 कला संपूर्ण का मतलब क्या है, आत्मा की 16 कला। जैसे चंद्रमा की 16 कला होती है, अमावस्या से अगर गिनती करो, अमावस्या से लेकर पूनम तक ये पूरे 16 दिन है। तो कहा अमावस्या माना बिल्कुल डिग्री एक भी नहीं चंद्रमा की, और फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और पूनम की रात फुल मून संपूर्ण बन जाता है पूरा गोल। तो संपूर्ण माना पूरा गोल, और संपन्न माना लाइट से भरपूर, वो पूनम की रात ही होती है। और पूनम की रात, पूनम के दिन ही सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो सत्य नारायण बनना है तो क्या करना पड़ेगा? संपन्न भी बनना है और संपूर्ण भी बनना है, तब जाके फरिश्ता बनेंगे। फरिश्ता किसको कहेंगे? जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। एक होता है भूत, कल भी बाबा ने भूत की बात कही, कोई ऐसे सुसाइड करते हैं तो वो आत्मा अगर किसी में उसका मोह अटका हुआ है तो वो उसके आगे वो भूत बन के आता है, एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। वो सूक्ष्म शरीर नहीं है, वो काला शरीर है। सूक्ष्म शरीर तो लाइट का शरीर होता है, जो हमारी गुलजार दादी ने सबसे पहले ब्रह्मा का देखा, ब्रह्मा बाबा का देखा। सबसे पहले गुलजार दादी ने सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार किया यज्ञ में, जब 14 साल भट्टी में थे। सफेद सफेद जैसे चंद्रमा की चांदनी होती है ना, अगर एक चांद की कितनी चांदनी निकलती है, उसी प्रकार हजारों चांद हो तो उनकी चांदनी कैसी होगी, वो सूक्ष्म वतन का अनुभव है। और उस सूक्ष्म वतन में, वो उस चांदनी की लाइट में ब्रह्मा बाबा का आकारी फरिश्ता रूप देखा, लाइट में, सफेद लाइट में, सफेद वस्त्रधारी जैसे वो सूरत ब्रह्मा बाबा की थी, बस लाइट ही लाइट लाइट, वो किरणें फैल रही है उसी लाइट आकार में। लेकिन गुलजार दादी छोटी थी बहुत, 9 साल की उम्र में तो आई थी ज्ञान में, परंतु उसने जब वो अनुभव किया तो वो तो डर गई, क्योंकि लाइट ही लाइट और उस लाइट में ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण रूप देखा तो वो तो डर गई। और फिर वो नीचे आई और फिर बाबा को बताया कि मैंने क्या देखा, तो बाबा ने उनसे पूछा, क्योंकि बाबा को भी उत्सुकता हुई कि क्या देखा इसने, तो बाबा ने कहा कि अभी फिर से जाओ और वो रूप आपको दिखाई दे तो उनसे पूछो आप कौन हो, आप कौन हो। तो फिर दोबारा बैठी है, शरीर हो गई और एकदम शिव बाबा ने उनकी रस्सी खींच ली और उसने सूक्ष्म वतन में अनुभव किया उस ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण रूप को। तो उनसे पूछा, क्योंकि श्रीमत मिल गई थी, उनसे पूछो आप कौन हो, तो पूछ लिया आप कौन हो। तब उस संपूर्ण रूप ने कहा कि ब्रह्मा जो साकारी दुनिया में है, मैं उसका संपूर्ण रूप हूं, और यही ब्रह्मा फिर ये बनेगा ये संपूर्ण रूप। तो ब्रह्मा बाबा को महसूस पता चला कि मेरा संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में है, क्योंकि शिव बाबा इस सृष्टि पर आने से पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, सूक्ष्म वतन रचते हैं और फिर सृष्टि पर आते, तभी तो बाबा को, ब्रह्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में विष्णु का साक्षात्कार कराया, सबसे पहला साक्षात्कार कराया। तो सूक्ष्म वतन संगम पर ही रचा जाता है, शिव बाबा रचते हैं। सारा द्वापुर में साक्षात्कार जो होते हैं वो कोई सूक्ष्म वतन के नहीं होते हैं, वो तो किसके भी होंगे, जिसका जो भक्त होगा उसको उसका साक्षात्कार होगा, गणेश का भी होगा तो हनुमान का भी होगा, कोई ऐसे काली का भी होगा, देवी का भी होगा, वो तो उसकी भावना अनुसार उसको भाड़ा मिलता है, अगर ड्रामा में उसका पार्ट होगा तो वो साक्षात्कार होगा। पर सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार ये संगम पर ही ब्राह्मण बच्चों को होता है। तो फिर जब उसने, बाबा ने उनको सूक्ष्म ब्रह्मा ने कहा कि यही ब्रह्मा फिर ये बनेगा, तो ब्रह्मा बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया संपूर्ण बनने लिए, न्यारा प्यारा कैसे बाबा होते गए। अब केवल ब्रह्मा बाबा का ही संपूर्ण रूप नहीं, हमारा भी है। आप ये सोचो, जब संदेशियां वतन में जाती है तो क्या देखती है कि बाबा ने सारी सभा को इमर्ज किया, ये सारे जो यहाँ बैठे हैं ना सबको बाबा ने इमर्ज किया, तो कैसे वहां इमर्ज हो गए होंगे, आपके सूक्ष्म रूप में इमर्ज हुए होंगे ना, ये स्थूल रूप थोड़ी गया वहां। तो हर एक का सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप है, लेकिन अब उसको अपने पुरुषार्थ से प्राप्त करना है। ब्रह्मा बाबा ने अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया, वो बार बार संदेशियों को कहता था जाओ देख कर आओ कि मेरा जो फरिश्ते रूप से मैं कितना नजदीक आया हूँ पुरुषार्थ करता था अंदर और मैं कितना नजदीक आया हूँ। तो गुलजार दादी को तो खास बाबा कहते थे, तो दादी बताती थी कि कैसे अभी धीरे धीरे आप फरिश्ता रूप के नजदीक आ रहे हैं। और जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त जैसे हुए गुलजार दादी वतन में गई तो देखा एक ही रूप है, वो जो साकारी रूप जो था वो फरिश्ते रूप में मर्ज हो गया, एक हो गया। और अभी उसी फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा हमारा इंतजार कर रहे हैं, वतन में इंतजार कर रहे हैं कि बच्चे तुम भी मेरे साथ फरिश्ते बनो। और फिर तब परम धाम के गेट खोलेंगे, तो पहले फरिश्ता बनना है, डबल लाइट बनना है, सब बंधनों से मुक्त बनना है, सकाश देनी है, तभी तो बाबा मनसा सेवा की बातें कर रहे हैं। अभी तो बहुत ऊंची स्थिति की बातें बाबा करते हैं, सारे विश्व को सकाश देनी है, आपके फरिश्तेपन का साक्षात्कार होना है। आप पश्चिमी दुनिया में जाएंगे ना, अमेरिका जाइए, जर्मनी जाइए, यूरोप जाइए, यूरोप में बहुत फरिश्ते दिखाते हैं, हर एक बिल्डिंग के ऊपर फरिश्ते ऐसे दिखाते, फरिश्ते पंखों वाले फरिश्ते। अब कोई मनुष्य को थोड़ी ऐसे पंख आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा ही अंत में साक्षात्कार रूप होगा। तो फरिश्तापन और पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों के साक्षात्कार होंगे, ये भगवान के दूत बतलाते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में इस्लाम में भगवान के दूत बताते जो फरिश्ते थे। और पूर्वी दुनिया में जाइए तो वहाँ बुद्धिज्म है, तो वहाँ पर अधिकतर वो, और हिंदू भी है तो वो देवियों को मानते हैं, बुद्धिज्म में भी देवियों को मानते हैं। और देवियाँ, तो ये देवियाँ, देवियों का साक्षात्कार पूर्वी दुनिया में होगा और पश्चिमी दुनिया में फरिश्तों का साक्षात्कार होगा, क्योंकि मान्यता अलग अलग है। तो बाबा कहते वो कौन होंगे, हम ही तो होंगे, लेकिन अभी वो साक्षात्कार मूरत बनना है। और साक्षात्कार मूरत तब बन सकेंगे हाँ, जब अशरीरी स्थिति का अनुभव करेंगे, सब इंद्रियों के आकर्षण से परे जाएंगे, एक बाबा दूसरा न कोई, सब संबंध केवल एक से, बस बुद्धि और कहीं भी भटके नहीं, तब कहेंगे कि हाँ फरिश्ता स्थिति के नजदीक है। उपराम होते गए बाबा, उपराम होते गए दादियां, देखो सब धीरे धीरे कैसे उपराम होती गई। अभी हम दादी रतन मोहिनी जी को भी देखते हैं, बिल्कुल उपराम है, फरिश्ता बन गई, देखती कितना प्यार से है, दृष्टि इतना प्यार से देती है, परंतु आवाज से परे गई है। बस भी ऐसे नहीं कि आवाज से परे, जब बोलती है लेकिन जो काम की बात, बस काम की बात। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल काम की बात, जो 10 शब्दों के बजाय 2 शब्दों में काम की बात हो सकती है, पर उसकी बजाय 20 शब्द बोल देते हैं, जो नहीं बोलना वही बोल देते, तो फरिश्ता कैसे बनेंगे, बनेंगे क्या? और जितने कम शब्द बोलेंगे उन कम शब्दों का मूल्य होता है, अगर बहुत बोलते बहुत बोलते तो सुनते ही नहीं, इसको बोलती है तो बोलने की आदत है, छोड़ो इसको ना? जो कम बोलता है उसका एक एक वाक्य महावाक्य बन सकता है, जो ज्यादा बोलता है उसके बोल की कोई वैल्यू नहीं है। तो हमारे बोल कैसे हो, हमारी दृष्टि कैसे हो, तब हम फरिश्ता बन सकेंगे। और फरिश्ता बन गए फिर तो देवता तो बन ही जाएंगे, निश्चित है ना? तो बिल्कुल बन गए। बस ऐसा अपना जीवन बनाएं, तो देखो बाबा को हर समय उसके लिए धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, आपने मेरा जीवन कितना ऊंचा बना दिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you.
ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने की बहुत सुंदर सहज सरल भाषा में विधि दीदी ने बताई। ब्राह्मण जीवन की मुख्य धारणाओं पर भी दीदी ने फोकस किया और ज्ञान अमृत रोज पीना है, रोज मुरली सुनना है, इस मुख्य धारणा पर अंडरलाइन किया। पुनः पुनः दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के लिए डायरेक्शन है, जो डायमंड हॉल के सेवाधारी है वे सभी रुके रहेंगे, सामने सोफा के पास आकर बैठेंगे। दीवान भाई जी आप सभी से मिलेंगे और अन्य जो भी भाई बहने डायमंड हॉल की सेवा में सहयोग देना चाहते हैं वे भी सामने आकर सोफा में बैठेंगे। दीवान भाई जी आप सभी से मिलेंगे।